समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, स्टूडियो की घड़ी में ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि उनके पास क्या कुछ खास है। इसके अलावा खेल गतिविधियों और आर्थिक जगत पर भी रहेगी हमारी नजर और उन खास शख्सियतों को भी हम करेंगे याद जिनकी आज है पुण्यतिथि या है जन्मदिवस। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं सरफिरोजी और मेरे साथ हैं सहयोगी शेफाली। शेफाली, आपको भी मेरा नमस्कार।
Namaskar, Sarfirozi. Hello, I am Shefali Singh and dear listeners, I hope you all are enjoying your Saturday afternoon. Perhaps you've had that heavy meal, taken a soothing siesta and are now tuned into our program Parikrama on 100.1 MHz. Sitting with your cups of tea, so let's get ready to sip along as we bring you a selection of news, our discussion segment Dateline India, reports, capsules, business, tributes and much more. All these over the next 30 minutes. We begin with the news headlines first. Government to set up primary agricultural credit societies in around 2 lakh gram panchayats during the next 5 years.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से ओडिशा के 4 दिन के दौरे पर रहेंगी। वो कल पुरी में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा देखेंगी।
तमिलनाडु पुलिस अरेस्ट 8 persons इन कनेक्शन विद मर्डर ऑफ स्टेट बीएसपी चीफ के आर्मस्ट्रांग। चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन डायरेक्ट पुलिस ऑफिशियल्स टू प्रोब द केस एक्सपीडिशियसली।
असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 30 जिलों के 24 लाख लोग प्रभावित।
रिफॉर्मिस्ट मसूद पेजेशकियां विन्स रन ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन ईरान। एंड नाउ टाइम फॉर आवर सेगमेंट डेटलाइन इंडिया, इन विच वी टेक अ लुक एट द डेवलपमेंट्स टेकिंग प्लेस एट नेशनल और ग्लोबल लेवल। टुडे वील टॉक अबाउट International Day of Cooperatives, that is celebrated on 6th July, which is today. So, Sarfarozi, cooperatives are like stars, each one shining bright, but together they illuminate the sky.
Bilkul.
This year, on July 6, cooperatives around the world are celebrating the International Day of Cooperatives with the theme, Cooperatives, Building a Better Future for All.
और शेफाली, इस मौके पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार अगले 5 वर्षों में लगभग 2 लाख ग्राम पंचायतों में बहुउद्देश्य प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी पैक्स की स्थापना करेगी और इनका मकसद उन ग्राम पंचायतों में और इनकी स्थापना उन ग्राम पंचायतों में की जाएगी जो अभी तक सहकारिता क्षेत्र से बाहर हैं। श्री शाह ने 102वें अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर गांधीनगर के महात्मा मंदिर में आयोजित सहकार से समृद्धि कार्यक्रम के दौरान इसकी घोषणा की।
इस देश में आज भी 2 लाख पंचायतें ऐसी हैं जहां एक भी कोऑपरेटिव संस्था नहीं है। हमने लक्ष्य रखा है अगले 5 साल में ये 2 लाख पंचायतों में मल्टीपर्पज पैक्स बनाने का काम हमने कोऑपरेटिव मूवमेंट की सोचनी चाहिए। अगर आप कोऑपरेटिव मूवमेंट को मजबूत करोगे तो सारे कोऑपरेटिव मूवमेंट के साथ जुड़े हुए किसान आपको बार बार चुनकर लाएंगे।
Emphasizing on economic cooperation among cooperatives, Mr. Shah urged all the district and state cooperatives of the country to conduct their financial transactions only in cooperative banks in order to strengthen the cooperative bank network. He applauded the progress of pilot projects initiated in Banaskantha and Panchmahal districts of Gujarat in this direction.
ऑर्गेनिक फूड को बढ़ावा देने के लिए और ऑर्गेनिक फूड का उत्पादन करने वाले किसानों को उचित मूल्य मिल जाए, मुनाफा मिल जाए, इसके लिए आज NCOL के द्वारा भारत ऑर्गेनिक आटा का लोकार्पण हुआ है। मैं अपील करना चाहता हूं, एक भारत ऑर्गेनिक जो NCOL का है और दूसरा अमूल, ये दोनों विश्वसनीय ब्रांड है। मैं देश भर के लोगों को अपील करना चाहता हूं, आप विश्वास कर ये दोनों ब्रांड खरीदें, ये 100% ऑर्गेनिक है।
और देश में सहकारी क्षेत्र के सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार द्वारा की गई कई पहलों के बारे में बात करते हुए श्री शाह ने सहकारी समितियों को व्यवहारिक बनाने के लिए सहकारी नेटवर्क के विस्तार पर जोर दिया।
On the occasion, the minister launched the Gujarat government's special assistance scheme for farmers on the purchase of nano urea. Mr. Shah also virtually inaugurated Amul's first organic store in Delhi and also launched Bharat Organic Atta produced by the National Cooperative Organics Limited, NCOL, during the event. Gujarat CM Bhupendra Patel lauded the efforts of the central government in strengthening the primary cooperatives and encouraging the use of technology in cooperative sector. Union Minister of State for Cooperation Muralidhar Mohol and eminent leaders of the cooperative sector were present on the occasion.
इस साल 102वां अंतर्राष्ट्रीय सहकारी दिवस और 30वां संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारी दिवस मनाया जा रहा है। श्रोताओं, आपको बताते चलें कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन ने सहयोग के आदर्शों और सिद्धांतों का सम्मान करने के लिए 1923 में पहले अंतर्राष्ट्रीय सहकारी दिवस की स्थापना की थी।
Yes, and I'd also like to tell the listeners that officially declared by the United Nations General Assembly, the International Day of Cooperatives is observed annually on the first Saturday of July. The purpose of this day is to promote cooperatives globally and foster an environment that will foster their expansion and profitability. Cooperatives will have the opportunity to showcase their current and historical contributions to building a sustainable future, accelerating efforts to implement the Sustainable Development Goals, SDG, by 2030. The theme aligns well with the objectives of the upcoming UN Summit of the Future, whose theme is Multilateral Solutions for a Better Tomorrow. Year 2025 will be celebrated as the International Year of Cooperatives. Through self-help and empowerment, reinvesting in their communities and concern for the well-being of people and the world in which we live, cooperatives nurture a long-term vision for sustainable economic growth, social development and environmental responsibility. The shared ownership model of cooperatives promotes economic equality and fair wealth distribution. This approach contrasts with traditional business models that often lead to wealth concentration.
और शिफाली, सहकारी समितियां कई तरीकों से सतत सामुदायिक यानी स्टेबल विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करती हैं, जैसे कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाने के लिए स्थानीय स्तर पर आपूर्ति की सोर्सिंग और निर्णय लेते वक्त ये ध्यान रखना कि कम्युनिटी पर उसका क्या असर पड़ेगा। और सहकारी समितियों का लक्ष्य दुनिया भर के लोगों तक अपने आर्थिक और सामाजिक लाभ पहुंचाना है। ये साझा मूल्य, कम असमानता और टिकाऊ समाधानों पर आधारित वैश्वीकरण का एक वैकल्पिक मॉडल प्रदान करती हैं।
So as we can say that the term cooperative is based on the principle of cooperation और इसमें सभी को साथ लेके आगे बढ़ना है।
बिल्कुल।
तो उसी में through democratic governance and shared ownership, cooperatives set an example for peace and stability, bringing people from diverse backgrounds together on equal terms and fostering understanding and respect. The 2023 UN Secretary General report on cooperatives and social development acknowledged that cooperatives have a track record of promoting the economic and social development of all people, including marginalized groups. This day will build the momentum towards the 2025 International Year of Cooperatives, which was declared by the UN last year.
और शिफाली, ये सहकारी समितियों की बहुत बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है कि दुनिया भर के 12% से अधिक लोग 30 लाख सहकारी समितियों में से किसी न किसी का हिस्सा हैं।
जी बिल्कुल।
और वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर की माने तो सबसे बड़ी 300 सहकारी समितियों और म्यूचुअल का कुल कारोबार 2409 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। सहकारी समितियां स्थिर और सतत आर्थिक विकास और गुणवत्तापूर्ण रोजगार में योगदान देती हैं। ये दुनिया भर में 28 करोड़ या दूसरे शब्दों में कहें तो दुनिया की 10% आबादी को किसी न किसी तरह से नौकरी का अवसर प्रदान करती हैं।
जी, और ये टर्म काफी मॉडर्न लग रहा होगा, बट द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑपरेटिव इज एक्चुअली वेरी ओल्ड. द कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया हैज अ रिच हिस्ट्री डेटिंग बैक टू द लेट 19th सेंचुरी. इन 1904 द कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट वॉज पास्ड व्हिच लेड द फाउंडेशन फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कोऑपरेटिव इन द कंट्री. एंड डियर लिसनर्स, पे नोट, सर फ्रेडरिक निकोलसन इज नोन एज द फादर ऑफ द कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया.
और आज हम उन सहकारी नायकों को सलाम करते हैं जो एक अधिक समावेशी और न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं.
In today's defense news capsule from the Directorate of Public Relations, Ministry of Defense, listen to the story of exceptional bravery and resilience of Veer Nari Smriti Singh, the wife of Captain Anshuman Singh, who died while saving his fellow army men from a fire at Siachen last year. He was conferred posthumously Kirti Chakra, India's second highest peacetime gallantry award. His mother and wife received the gallantry award from President Draupadi Murmu yesterday evening. Here is the report filed by Broadcasting Officer Anand Saurabh.
पिछले साल यही जुलाई का महीना था और तारीख थी 19 जुलाई. पंजाब रेजिमेंट की 26वीं बटालियन के आर्मी मेडिकल कोर के कैप्टन अंशुमान सिंह दुनिया के सबसे ऊंचे रण क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पे मौजूद थे. तेज हवाएं चल रही थी, तभी एकाएक सेना के बंकर में आग लग गई. इस आग में कई जवान बंकर के अंदर ही फंस गए. एक मेडिकल सेंटर भी वहां था जहां जीवन रक्षक दवाएं और उपकरण रखे हुए थे. ये सब देख कैप्टन अंशुमान सिंह ने अपनी जान की परवाह किए बिना बंकर में घुस गए और वहां फंसे जवानों को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करने लगे. और इस दौरान कैप्टन ने अपने अदम्य साहस और शौर्य से वहां फंसे सभी सैनिकों को सुरक्षित निकाल लिया. वह लाइफ सेविंग ड्रग्स को भी सुरक्षित निकालने में कामयाब रहे, लेकिन वह खुद ही आग के चपेट में आ गए और शहीद हो गए. कैप्टन अंशुमान सिंह की इस अदम्य साहस को कल राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कीर्ति चक्र से सम्मानित किया. और इस मौके पर शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह की मां और उनकी पत्नी और वीर नारी श्रीमती स्मृति सिंह ने कीर्ति चक्र सम्मान राष्ट्रपति से ग्रहण किया. इस मौके पर वीर नारी श्रीमती स्मृति सिंह ने हमसे विशेष बातचीत की. आइए सुनते हैं उनके जज्बातों को, उनके इस उद्गार को.
My name is Smriti. I am wife of Captain Anshuman Singh, the martyr, the hero. So we met on the first day of college and I would not be dramatic, but it was love at first sight. And after a month, he got selected into AFMC. We met in an engineering college, he got selected in a medical college. So super intelligent guy. So from then on, after just 1 month of meeting, it was a long distance relationship for 8 long years. And then we were like, oh my God, it's too long. Let's get married now. So we did. And unfortunately, within 2 months of marriage, he got posted into Siachen. So we try to figure out, okay, let's figure it out. It's just going to be these many months. I'll do this in the meantime, you do this, and we can manage, we can cope up, and then we can live together. I mean, it's going to be fine, you know. On 18th July, we had a long conversation about how our life is going to be the next 50 years. We're going to build a house, we're going to have kids, and whatnot. 19th morning, I get up, I get a call. He's no more. What? I just talked to him. I mean, what do you mean, what, no more? So for first 7-8 hours, I called everybody in the unit. My father-in-law is also an ex-army person. Spoke to him. God knows how much we tried. We were not ready to accept that anything of such sort has happened. And he was very much capable. He would tell me, I'll die with the brass in my chest. Just because I am not going to die an ordinary death, like nobody would know. People would know. People would know you. People would know me. But 7-8 hours, it got confirmed that he's no more. And till date, I'm not coping up. I'm just trying to figure out. Maybe it's not true. But now that I have Kirti Chakra in my hand, maybe it's true. But it's okay. I mean, he's a hero. So we can manage a little of our lives because he's managed a lot. He's given up all his life, all his families, just to save other 3 families, his army family. I would say that I was considering myself to be the top priority, but turns out I'm just a little behind India. It's okay, I can manage it.
Parikrama ke liye, Jan Sampark Nirdeshalay, Raksha Mantralay se main Anand Saurabh.
Oh. और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है।
As part of the Indian Army's celebrations of the 25th anniversary of Kargil Vijay Diwas, various programs are being conducted across the country, particularly in Kargil, Ladakh. These include the inauguration of war memorials, sports events, cultural programs and awareness programs. As part of this celebration, the famous Captain Saurabh Kalia cricket tournament with Skarchan Latu clinching a thrilling victory over Friends Stars by 7 runs was also held.
The tournament held in LOC village Kaksar was a part of the Indian Army's celebration for the 25th anniversary of Kargil Vijay Diwas. The event was attended by several dignitaries including Chief Executive Councillor, Ladakh Autonomous Hill Development Council Kargil, Dr. Muhammad Jafar Akhon, who was the chief guest, and the Deputy GOC of the 8th Mountain Division Kargil was the guest of honor. Dr. Akhon highlighted the special significance of this year's tournament, which commemorates the 25th anniversary of Kargil Vijay Diwas. He noted that the tournament has expanded, allowing more participants to pay tribute to the martyrs. A player from the university campus Kargil women's team expressed its gratitude to the youths of Kaksar and the Indian Army for providing a platform for women to showcase their talents. Talib Hussain from Latu thanked the Indian Army for organizing the beloved event, emphasizing its importance for cricket lovers and as a tribute to the martyrs. The tournament concluded with a special message from Mrs. and Mr. N.K. Kalia, parents of the late Captain Saurabh Kalia. They expressed heartfelt thanks to the organizers, teams and players for participating in the tournament held in their son's name each year. For Parikrama, this is Anad Ali from Kargil Union Territory of Ladakh.
Telangana and Andhra Pradesh chief ministers will be meeting later in the evening in Hyderabad to resolve pending interstate issues. Telangana Chief Minister A. Revanth Reddy and Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu will be meeting at the Mahatma Jyotiba Phule Praja Bhavan in Hyderabad. Few ministers and senior officials from both sides will also attend the meeting. More from our correspondent. And this is the news about the chief ministers meeting to discuss extremely important issues at, as I said, Mahatma Jyotiba Phule Praja Bhavan in Hyderabad.
Both all eyes are on the outcome of the meeting this evening, as both the leaders share a cordial relationship. It may be recalled that Mr. Reddy was a TDP leader before he joined the Congress and had even served as the working president of TDP's Telangana unit. 10 years after formation of Telangana, several issues like bifurcation of assets, state-run institutions, power bill dues, transfer of leftover employees to their native states are still unresolved between the two Telugu states. Hyderabad ceased to be the common capital for both the states from June 2nd this year as per the Andhra Pradesh Reorganization Act 2014. The metro city is now the capital city of Telangana only. As per officials, the division of various state-run institutions and corporations of undivided state listed in Schedule 9 and Schedule 10 of the Reorganization Act has not been completed as there was no consensus over several issues. Sharing of river water relating to Godavari and Krishna also may likely to come up for discussion during the meeting. Opposition BRS leaders even demanded that the Telangana government should press for the return of a few villages in 7 blocks from Andhra Pradesh to Telangana. These villages were merged with Andhra Pradesh at the time of bifurcation to facilitate the construction of the multipurpose Polavaram project. Lakshmi for Parikrama, Hyderabad.
And dear listeners, now we'll take you on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
Birth of a nation. India's glorious freedom struggle is one of the greatest struggles the modern world has ever witnessed. Brings you a glimpse of the struggle every day.
6th of July 1837 is the birth anniversary of R.G. Bhandarkar, who was one of India's pioneer social reformers and first Orientologists. He reconstructed the political history of the Satvahans of the Deccan and the history of Vaishnavism and other sects. As a great social reformer, through his researches, he castigated the evils of the caste system and child marriage.
Bhandarkar became a member of the Paramhans Sabha in 1853, where he was inspired by the lectures of Keshub Chandra Sen. In the year 1866, in a public meeting, he took a public pledge to eradicate the social evils of child marriage, the caste system, and to promote the education of women and widow remarriage.
Thus, to attain the objectives, R.G. Bhandarkar, along with M.G. Ranade, helped found the Prarthana Samaj in 1867. As an educationist, he was elected to the Imperial Legislative Council in 1903 as a non-official member. Gopal Krishna Gokhale was another member of the council.
R.G. Bhandarkar was also the first Indian Vice-Chancellor of Bombay University and the first Indian to be awarded an LLD degree by the university in 1904. Justice Ranade had a great respect for Dr. Bhandarkar. Ranade said,
"Dr. Bhandarkar's stature is no less than the great leaders of Brahmo Samaj. He's not just an eminent scholar. He's greater than that. He's a guide. He has been an example by himself and a teacher from whom we receive the best instructions in our life."
Dr. Bhandarkar left this world on the 24th of August 1925. We salute the great nationalist.
We also remember freedom fighter and crusader of social justice, Babu Jagjivan Ram, on his death anniversary. Born in Bhojpur, Bihar, Jagjivan Ram played a very active role in the freedom struggle. He became a legislator at the young age of 28 in the year 1936 as a nominated member of the Bihar Legislative Council. When the Congress government was formed in 1937, Jagjivan Ram was appointed as the parliamentary secretary. However, in 1938, he resigned along with the entire cabinet.
Inspired by Gandhiji, Jagjivan Ram courted arrest on the 10th of December 1940. He was again arrested on the 19th of August 1942 for his active participation in the Quit India movement. After his release, he became the youngest minister in the interim government in 1946. He also served as a member of the Constituent Assembly of India.
Post-independence, Babu Jagjivan Ram went on to serve as a minister with various portfolios for the next 30 years. His contribution to the Green Revolution in India is still remembered. The great nationalist leader left for his heavenly abode on the 6th of July 1986.
We also remember Martyr Sadhu Singh, who was born on the 6th of July 1921 in Kapurthala, Punjab. Sadhu Singh was a sepoy in the Bahawalpur Infantry of the British Indian Army. Following his capture by the Japanese forces in Singapore in 1942, he volunteered to join the Indian National Army there. He confronted the British forces in the battlefields of Ipoh, Pegu and Rangoon. Sadhu Singh lost his life while fighting on the Burmese front in 1944. We salute this brave martyr.
और अब चलते हैं खेल के मैदान में और लेते हैं वहां की जानकारी।
Yes, and here's the sports news. England will face in-form Switzerland in the quarter-final of the Euro Cup 2024 at the Dusseldorf Arena in Germany tonight at 9:30 Indian Standard Time. England is bidding for its first European Championship title in 11 appearances, while the Switzerland team is eyeing for their maiden semi-final spot. In another fixture at 12:30 IST tonight, Netherlands will face Turkey in Berlin. The semi-finals of Euro Cup will be played on 9th and 10th of July and the final in Berlin on 14th July.
और अब बात कर रहे हैं बैडमिंटन की, जहां कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के प्रियांशु राजावत पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में आज रात फ्रांस के एक्लेस लेनियर के साथ खेलेंगे। इससे पहले राजावत ने बड़ा उलटफेर करते हुए शीर्ष वरीयता प्राप्त और विश्व के चार नंबर के खिलाड़ी डेनमार्क के एंडर्स एंटनसेन को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। महिला डबल्स में त्रिशा जोली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी के क्वार्टर फाइनल में हारने के बाद अब राजावत इस प्रतियोगिता में एकमात्र भारतीय खिलाड़ी बचे हैं। और अब श्रोताओं, समय है उन हस्तियों को याद करने का जो आज ही के दिन इस दुनिया में आए या इस दुनिया से विदा हुए। शुरुआत कर रहे हैं चेतन आनंद से, जिनकी आज मृत्यु जयंती है। ये प्रसिद्ध हिंदी फिल्म निर्माता, निर्देशक और पटकथा लेखक थे। बॉलीवुड फिल्मों को स्तर पर पहली बार पहचान दिलाने का श्रेय चेतन आनंद को ही जाता है। और शेफाली, वैसे तो इन्होंने निर्देशन बहुत सारी फिल्मों का किया बहुत ऊंचे स्तर पर जाकर, पर कमाल की बात यह है कि इन्होंने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत अभिनय से की थी। ये 1944 में आई फणी मजूमदार की फिल्म राजकुमार में इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई। इसके बाद इन्होंने अभिनय छोड़कर निर्देशन के क्षेत्र में किस्मत आजमाई और वहां इतिहास रच दिया। इन्होंने इनकी फिल्म हकीकत को सर्वश्रेष्ठ दूसरी फीचर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। इसके बाद इनकी फिल्म कुदरत को सर्वश्रेष्ठ कहानी का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया। हीर रांझा इनकी फिल्म 1970 में आई जिनका इन्होंने निर्देशन किया और ये बाद में कल्ट क्लासिक फिल्म साबित हुई। और इस मौके पर सुनते हैं इनकी इसी फिल्म का ये गाना।
मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आप चुराए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आप चुराए, हमें क्या हो
And dear listeners, today is the birthday of another significant personality who is the 14th Dalai Lama, the highest spiritual leader and head of Tibetan Buddhism. He is considered a living bodhisattva. The Dalai Lama travels worldwide to give Tibetan Mahayana and Vajrayana Buddhism teachings. He also attends conferences on a wide range of subjects including the relationship between religion and science. His work includes focus on the environment, economics, women's rights, non-violence, interfaith dialogue, Buddhism and science. And here I'd just like to share a small quote by him. World peace must develop from inner peace. Peace is not just mere absence of violence. Peace is, I think, the manifestation of human compassion. And dear listeners, Dalai Lama was also awarded with the Nobel Prize in 1989.
जी शेफाली, जैसा कि आपने बताया कि अहिंसा के रास्ते पर चलकर तिब्बत को मुक्त कराने के शांतिपूर्ण समाधान प्रयासों के लिए इन्हें 1989 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। सुनते हैं नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने के बाद उनके ये शब्द।
I feel great honored, humbled and deeply moved that you should give this important prize to a simple Buddhist monk of Tibet. I am no one special, but I believe the prize is a recognition of the true value of altruism, love, compassion and non-violence, which I try to practice in accordance with the teachings of the Buddha and the great sages of India and Tibet. I accept the prize with profound gratitude on behalf of the oppressed.
And dear listeners, today is also the birthday of Mysore Srinivas Sathyu, popularly known as M.S. Sathyu, a film director, stage designer and art director from India. He's best known for his directorial film Garam Hawa, which was based on the partition of India. He was awarded with Padma Shri in 1975. His best known work, Garam Hawa, is one of the last cinema productions featuring 1950s Marxist cultural activists including Balraj Sahni and Kaifi Azmi. Garam Hawa won several Indian National Awards in 1974, including a National Integration Award. It was screened in the competitive section at Cannes and was also the Indian entry at the Oscars. It won the Filmfare Award for Best Screenplay.
और आज ही मृत्यु दिवस है जगजीवन राम का भी। ये स्वतंत्रता सेनानी और आधुनिक भारतीय राजनीति के शिखर पुरुष माने जाते हैं। इन्हें आदर के साथ बाबूजी के नाम से संबोधित किया जाता है। शेफाली, ये लगभग 50 वर्षों के संसदीय जीवन में राष्ट्रपति इनका समर्पण और निष्ठा बेमिसाल रही। इनका पूरा जीवन राजनीतिक सामाजिक सक्रियता और विशिष्ट उपलब्धियों से भरा हुआ है। सदियों से शोषण और उत्पीड़ित दलितों मजदूरों के मूलभूत अधिकारों की रक्षा के लिए इनके द्वारा किए गए कानूनी प्रावधान काफी ऐतिहासिक रहे
जी।
और बाबूजी सासाराम क्षेत्र से 8 बार संसद चुने गए और इन्होंने कई अलग अलग मंत्रालयों के मंत्री के रूप में कार्य किया। ये 1952 से 1984 तक लगातार सांसद चुने गए।
And dear listeners, today is also the birthday of Gauri Shinde, an Indian film director and screenwriter. Shinde made her directorial debut with the highly acclaimed film English Winglish.
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए सरफिरोजी और शिफाली को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की। नमस्कार, नमस्कार।